नमस्कार भारत, तारीख 26 मार्च दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गुजरात के पाटन जिले में दो छात्रों के बीच झगड़े को लेकर दो समुदायों में हिंसा, एक की मौत। पुलिस के मुताबिक अब नियंत्रण में स्थिति।
पांच आदमी को गिरफ्तार कर दिया, एक की मौत हो गई, पुलिस बंदोबस्त दी गई है, अभी तो शांति है, खैरियत है।
अपने विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के इरादे में उत्तराखंड की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष ने उठाए सवाल।
अभी जुमा हफ्ते भर मिली हुई सरकार को बने हुए, अब वो यहाँ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर वो उस जनमत का अपमान।
अबू धाबी में हत्या के मामले में सजा पाए पंजाब के 10 युवकों को रिहाई की आस।
यहाँ से दो तीन बार कोशिश की, तो पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे, उसके बाद उनको हमने राजी कर लिया, दिया मनी लेने के लिए वो तैयार हो गए।
न्यूज मेकर्स में मुलाकात दिलजीत दोसांझ से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। गुजरात पुलिस के मुताबिक पाटन जिले के गांव में दो समुदायों के बीच शनिवार को हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चांदसमा पुलिस स्टेशन के प्रभारी सीपी सातिया ने बीबीसी को बताया कि घटना शनिवार दोपहर वडावली गांव में हुई। दोनों समुदाय के बीच हुए संघर्ष में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी शहर सिलहट में हुए दो धमाकों में चार लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी और एक संदिग्ध हमलावर शामिल है। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि धमाके एक इमारत के पास हुए हैं, जहां संदिग्ध चरमपंथियों और सेना के कमांडो के बीच संघर्ष चल रहा था। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक फ्लैट में मौजूद चरमपंथियों ने इमारत के चारों तरफ फोटक डाल रखे हैं। बांग्लादेश आर्मी के एक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रशीदुल हसन ने बीबीसी को बताया कि चरमपंथियों को खत्म करने का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। रशीदुल ने बताया,
टाइम एंड अगेन दे आर टोल्ड टू सरेंडर बट दे हैवंट सरेंडर येट।
उनको समर्पण करने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने अब तक समर्पण नहीं किया है। उन्होंने आईईडी से हमला किया और कमांडो के साथ गोलीबारी भी की। वो अब भी अंदर हैं और ऑपरेशन जारी है। पेंटागन ने माना है कि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के विमानों ने इराकी सेना के अनुरोध पर पश्चिम मोसुल के इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले उन इलाकों पर हमला किया है, जहां कई नागरिक मारे गए हैं। एक बयान में अमरीका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उन्होंने एक हफ्ते पहले हुए हवाई हमलों की जाँच शुरू कर दी है। वहां के निवासियों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने 50 शवों को इमारतों से निकालते हुए देखा था, और उनका मानना है कि कई शव अब भी मलबे में दबे होंगे। इराक में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय संयोजक लीसे ग्रैंड ने कहा कि शहर के पश्चिम में सकरी गलियों की वजह से हताहतों की संख्या बढ़ी है। इराक के उपराष्ट्रपति ओसामा अल नुजैफी ने कहा कि ज्यादा गोलीबारी की वजह से मानवीय विपत्ति पैदा हो रही है। लीसे ग्रैंड ने कहा कि पश्चिमी मूसल के नागरिक अब भी बेहद खतरनाक स्थिति में है। लीसा ने कहा,
families in western Mosul right now are at grave extreme risk. They're at risk from explosive hazards. They're at risk from being caught.
इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमी मूसल के परिवार बेहद खतरे में हैं। उन पर विस्फोट होने का खतरा है, उन पर मोर्टार की फायरिंग में मारे जाने का खतरा है। हमने देखा है कि जो परिवार भागने की कोशिश करते हैं, वो आईएस के निशाने पर आ जाते हैं। वो भागना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। जो परिवार रुक जाते हैं, उन पर भी खतरा मंडराता रहता है। अगर आप परिवार को लेकर भागने की कोशिश करते हो तो आप खतरे में हैं, और अगर आप परिवार को लेकर रुकते हो तो भी आप खतरे में हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में पुलिस ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कम रोजगार पर टैक्स के खिलाफ हालिया प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारों लोगों ने प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती दी। कुछ लोग पुलिस के सामने फासीवाद के नारे लगा रहे थे, तो कुछ शर्म करो और बस करो के नारे लगा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही थी, महिलाओं को बालों से खींचकर बस में बैठा रही थी, जिससे उन्हें वहां से हटाया जा सके। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने साफ कर दिया कि टैक्स रद्द नहीं किया जाएगा, हालांकि इस साल उसे निलंबित कर दिया गया था। ये बीबीसी समाचार।
Oh. आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। खबरों की शुरुआत गुजरात के पाटन जिले की एक खबर से। पाटन जिले के वडावली गांव में दो छात्रों के बीच कल हुआ एक झगड़ा दोपहर बीतते बीतते दो समुदायों के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया। ये संघर्ष इस कदर बढ़ गया कि गांव के कई घरों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियां तोड़ दी गईं, संघर्ष में कई लोग घायल हो गए और इनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्थिति अब नियंत्रण में है। मैंने कल देर रात वडावली गांव के पास लगते थाने चांदसमा के प्रभारी सीपी सातिया से बात की और घटना के बारे में पूछा।
ये जो पाटन डिस्ट्रिक्ट है उसका जो चांदसमा पुलिस स्टेशन के हद में आता है गांव वडावली, 11-12 बजे दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ है।
ये किस जगह झगड़ा हुआ था इन लड़कों के बीच में और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था?
परीक्षा देने दोनों इकट्ठे हुए थे वहाँ वडावली का स्कूल में, दोनों को परीक्षा थी 10वीं कक्षा की। फिर ये दो लोग है वो हथियार लेकर इधर आया और ये मकान जला दिया।
कितने मकान जलाए?
कम से कम 90 क्या हुआ, इंजर्ड कर दिया 5 आदमी को, इसमें एक की मौत हो गई।
तो उसके बाद पुलिस बल वहाँ पहुँची?
हाँ, पुलिस बंदोबस्त अभी भी है।
कितनी पुलिस वहाँ तैनात की गई है?
यहाँ तो एक आईजी साहब है, 3 SP साहब, अभी तो शांति है, खैरियत है।
इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है?
नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया।
हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैंने अब से कुछ घंटे पहले अहमदाबाद में मौजूद पत्रकार अंकुर जैन से बात की और ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली।
पाटन जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान की ओर है और यहाँ शनिवार दोपहर को जो हिंसा शुरू हुई थी दो बच्चों की एक मामूली सी बात पे, वो देर शाम तक चलती रही और देर रात जो खबरें आई कि पुलिस ने स्थिति पे काबू पा लिया है। जो आगजनी हुई थी उसकी वजह से अहमदाबाद और गांधीनगर से दमकल गाड़ियों को भेजा गया था पाटन की ओर। गांधीनगर से कई उच्च पुलिस अधिकारी को भी स्थिति के नियंत्रण के लिए भेजा गया है।
अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का आज एक बड़ा सम्मेलन होना है, वहाँ किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं?
इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था है वो पाटन और अहमदाबाद के जो एंट्री पॉइंट है उसमें बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज जो है अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का एक महासम्मेलन है और उनका दावा है कि सम्मेलन में करीब 50,000 लोग शरीक होंगे और इसको चलते अहमदाबाद, गांधीनगर और स्वाभाविक पाटन की जो स्थिति बनी उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
ये थे अंकुर जैन जो बता रहे थे कि पाटन और अहमदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब बात संयुक्त अरब अमीरात से आई एक खबर की जिसे लेकर भारत के पंजाब में कई परिवारों को उम्मीद की नई किरण दिखी है। पंजाब में 10 युवकों को अबूधाबी में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत के मामले में सजा सुनाई गई है। इस सजा को माफ करने के लिए ब्लड मनी यानी दिया रकम दी गई है। दरअसल शरिया कानून में अगर हत्या के दोषी और पीड़ित परिवार के बीच सुलह हो पाए और अगर पीड़ित परिवार माफी देने को राजी हो जाए तो सजा माफ करने के लिए अदालत में अपील की जा सकती है। अदालत इस मामले में 12 अप्रैल को फैसला सुनाएगी लेकिन सुलह के बाद सजा पाए लोगों को आजादी की नई उम्मीद बन गई है। रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
अबूधाबी की अलैन अदालत में 10 पंजाबी युवकों के फांसी की सजा माफ करवाने के लिए ब्लड मनी यानी कि दिया मनी वहां की अदालत की मंजूरी के बाद जमा करवा दी गई है। सरबद्दा भला के संस्थापक एवं उद्योगपति SPS ओब्राय ने अदालत में 2 लाख दराम जमा करवा दिए हैं। अदालत अब अपना फैसला 12 अप्रैल को सुनाएगी। गौरतलब है कि अबूधाबी में हुए एक झगड़े में पाकिस्तान के शहर पेशावर के रहने वाले मोहम्मद फरहान रियाजी की मृत्यु हो गई थी जिसमें 10 पंजाबी नौजवानों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। बताते चले कि कई इस्लामिक देशों में शरिया कानून के मुताबिक दिया मनी यानी कि ब्लड मनी को न्याय का तरीका माना जाता है। इसमें हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को ब्लड मनी कहा जाता है। यह राशि हत्या करने वाला व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई भी चुका देता है और बदले में पीड़ित परिवार हत्या के आरोपी की सजा माफ़ करने की अपील अदालत में करता है। यह रकम तभी दी जाती है जब पीड़ित के परिवार वाले इसे लेने के लिए राज़ी हो जाएँ। इस केस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए SPS ओब्राय ने BBC को बताया।
इन द मीन टाइम हमने यहाँ से 2-3 बार कोशिश की, यहाँ से लड़के भेजे वहाँ पिशावर, उनको कॉन्टेक्ट किया, पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे तो उसके बाद उनको हमने राज़ी कर लिया और दिया मनी लेने के लिए वो तैयार हो गए। तो उसी टाइम फिर हमने पेपर वगैरह जो वहाँ टेस्ट किए यहाँ टेस्ट किए, तो 3 दिन पहले उनको फिर मैंने टिकटें भेज दी थी। इसमें क्या होता है कि शरीयत लॉ में है कि अगर हम विक्टिम एंड एक्सक्यूज फैमिली दोनों को अगर हम कंप्रोमाइज़ करा लेते हैं, चाहे वो पैसे दे के कराएं या विदाउट पैसे करा लें, तो अगर वो माफ़ी देंगे तो माफ़ी होगी, नहीं तो माफ़ी नहीं होती।
मृतक के पिता मोहम्मद रियाजी ने अपना एक लिखित माफ़ीनामा एलन अदालत में माननीय जज साहब के सामने खुद हाजिर होकर जमा करवा दिया है। मृतक के पिता मोहम्मद रियाज ने अदालत में कहा कि उन्होंने दोषियों को माफ कर दिया है। उनका कहना था कि वो 10 और घरों के चिरागों को बुझना नहीं देना चाहते। उन्होंने BBC को बताया,
बस इंसानियत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत है। तो मेरा बेटा तो मर गया, मतलब चलो और इन 10 बंदों में किसी की बीवी है, किसी का बाप है, किसी की बहन है, तो मैं जिस दर्द और दुख से गुजरा हूँ, तो मेरे ख्याल में मेरे दिल ने यह कहा कि चलो वो तो ना रहे, तो बतौर इंसानियत मैंने उसको माफ़ कर दिया कि चलो मेरा बेटा तो नहीं वापस आ सकते, तो इसी वजह से मैंने उसको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया।
निस्संदेह पंजाब के 10 परिवारों के लिए यह फैसला खुशी लेके आया। बरनाला के सुखविंदर सिंह के पिता जगतार सिंह का कहना था,
बहुत बहुत खुशी है सानू इस गल दी।
भारत और पाकिस्तान के बहुत से नौजवान पैसा कमाने के लिए दुबई और मिडिल ईस्ट में काम की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन कई बार लड़ाई झगड़ों में पड़कर इन देशों की जेल में पहुंच जाते हैं और बात जान गंवाने तक आ जाती है। यहाँ बताते चलें कि SPS ओब्रायन ने अब तक 80 के करीब लोगों को मौत की सजा से निजात दिलवाई है। अबूधाबी से रविंदर सिंह रॉबिन, BBC हिंदी के लिए।
अब रुख उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अपने विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की बात कर रही है। राज्य के 70 में से 22 विधायकों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं। इनमें से 17 विधायक BJP के हैं। उधर विरोधी BJP के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए राजेश डुबरियाल की रिपोर्ट।
18 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ लेते ही राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई। डबल इंजन की सरकार का अर्थ केंद्र और राज्य दोनों जगह BJP की सरकार। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कही थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के एक हफ्ते बाद कुछ लोगों को लगने लगा है कि इस गाड़ी ने कुछ गलत दिशा पकड़ ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, क्योंकि चुनाव के समय वो BJP विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे। चुनाव हारने के बाद वो इस रेस से बाहर हो गए थे। अजय भट्ट ने हाल ही में कहा है कि पार्टी नेताओं पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इनकी समीक्षा की जाएगी। BJP प्रवक्ता और विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं,
उस दौरान सत्ताधारी दल ने राजनीति के कारणों से बहुत सारे लोगों पे राजनीतिक दुर्भावना के चलते तमाम सारे मुकदमे बनाने का काम किया, तो इस प्रकार के तमाम सारी चीजों को नई सरकार को रिव्यू करना चाहिए।
मुख्यमंत्री समेत राज्य में BJP की 10 मंत्री हैं, जिनमें से 4 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें डॉक्टर हरक सिंह रावत पर 2, मदन कौशिक पर 2, सुबोध उनियाल पर 1 और अरविंद पांडे पर 12 मामले दर्ज हैं। गदरपुर के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उन विधायकों की सूची में भी सबसे ऊपर हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या और डकैती जैसे मामले हैं। पिछले साल पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोपों से सुर्खियों में आए मसूरी के विधायक गणेश जोशी पर कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें IPC की धारा 354 का मामला भी है। धारा 354 के तहत स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का केस बनता है। गणेश जोशी पर धारा 354 के तहत दर्ज मामले को भी पार्टी राजनीति से प्रेरित मानती है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय BJP के दुर्भावना के तहत आपराधिक मामले दर्ज करवाने के आरोप को गलत बताते हैं।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कोई ऐसा काम किया होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम निर्दोषों को जो है निर्दोषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना थोड़ी।
वैसे कांग्रेस के 4 विधायकों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इनमें कोई गंभीर मामला नहीं है। जसपुर से विधायक आदेश सिंह, चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह, केदारनाथ सीट से विधायक मनोज रावत पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने जैसे केस हैं। इस बार चुनाव हार गए किशोर उपाध्याय पर भी दंगा करने और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का एक मामला दर्ज है। वो पूछते हैं कि क्या सरकार उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेगी। इसके साथ ही वो सरकार पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाते हैं।
अभी जुमा हफ्ते भर भी नहीं हुए सरकार को बने हुए, अब वो यहाँ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर वो उस जनमत का अपमान।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अरविंद पांडे को विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पंचायती राज, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिए हैं। पिछले साल ही अनुसूचित जाति के सरकारी अधिकारी से बदसलूकी और मारपीट के आरोप में पांडे ने जेल भी काटी थी। राजेश डोबरियाल, BBC देहरादून।
राजनीति का रंग बड़ा अजब है। एयर इंडिया के एक कर्मचारी से कथित मारपीट को लेकर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ खबरों में है। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस कंपनियों ने उन पर रोक लगा दी है, लेकिन शिवसेना ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शिवसेना के किसी नेता पर ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगा है। पहले भी पार्टी नेता हिंसा के मामलों में आरोप का सामना करते रहे हैं और तब भी पार्टी का रुख ढुलमुल ही रहा। इसे लेकर BBC संवाददाता संदीप सोनी ने मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से बात की और सबसे पहले पूछा कि शिवसेना ऐसे मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है।
देखिए, शिवसेना की जो राजनीति रही है उससे ये जो बर्ताव है ये मुझे कतई कुछ अलग नहीं दिख रहा है, और इस संगठन ने इसके जन्म से लेकर आज तक इसी तरह का इनका इनकी जो संस्कृति है वो इसी तरह की रही है, और ऐसे हिंसक वाकया ये कुछ शिवसेना ने पहली बार नहीं किए है। महाराष्ट्र में ये राजनीति गए 40-50 साल से वो कर रहे हैं, ये पहली बार। दूसरी बात मुझे इसमें यह अहम लगती है कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे का जिस तरह का उनका पॉलिटिक्स था, जो राजनीति वो करते थे, उससे थोड़ी बदल गई है उद्धव ठाकरे के हाथ में उस संगठन के सारे सूत्र आने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सांसद है गायकवाड़ जी, उन्होंने जिस तरह का बर्ताव एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ किया और वो बहुत ही भद्दा और गलत बर्ताव था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी कई गंदे और बद्दे बर्ताव करने वालों को बड़े दल जो सत्ता में है, पूरे हिंदुस्तान की सत्ता उनके हाथ में है, कई राज्यों की सत्ता उनके हाथ में आ गई है, वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो शिवसेना के इस सांसद के ऊपर उस राजनीतिक दल ने कार्रवाई करनी चाहिए, ये अपेक्षा ही मुझे लगता है इस राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में करना ये गलत बात होगी, ऐसा मैं मानता हूँ आज की तारीख में।
आपने जिक्र किया बाल ठाकरे के हाथ से कमान उद्धव ठाकरे के आने के बाद शिवसेना की संस्कृति, काम करने के तरीके में कुछ चीजें बदल गई हैं, किस तरह का बदलाव देखते हैं आप?
बाल ठाकरे के वक्त शिवसेना का स्वरूप जो बहुत ही डायरेक्ट एक्शन पे या सीधे हिंसा की तरफ था वो अब नहीं रहा। उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना आने के बाद वो बहुत ही माइल्ड हो गई है, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर बाल ठाकरे होते तो जरूर आज के सामना में से उन्हें गायकवाड़ जी को शाबाशी दी जाती और इसका बहुत खुले दिल से समर्थन किया जाता। और अगर जिस तरह से उनको, मुझे ये भी बड़ा गलत लगता है कि उनका बर्ताव बहुत ही गलत था, लेकिन उस बर्ताव के कारण उन्हें कोई भी हवाई जहाज कंपनी ट्रैवल करने की जो अनुमति नहीं दे रही है, ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि लोकशाही विरोधी, लोकतंत्र के विरोधी एक कार्रवाई है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा बाल ठाकरे के होते हुए अगर होता था तो मुझे लगता है आज मुंबई में इसकी बहुत हिंसक प्रतिक्रिया आ जाती।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स और उनसे बात कर रहे थे संदीप सोनी। अब वक्त है ये जानने का कि आज दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ छपा है। तृप्ति श्रीवास्तव मौजूद हैं स्टूडियो में, क्या खबरें हैं तृप्ति?
वात्सल्य, वैसे सबसे बड़ी बात तो आज सभी पेपरों में जो दिखाई दे रही है वो यह है कि कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपने गृहनगर पहुंचे थे, और अमर उजाला ने इस पर लिखा है कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले हर यात्री को प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। वहीं जनसत्ता ने लिखा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ऐलान किया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा सील करने की योजना बनाई है 2018 तक। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट का हवाला दिया है जो कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो की है, जो आर्मी के हवाई और जमीनी संचार को सुधारने के सुझाव देती है जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जरूरी है। वहीं दैनिक भास्कर ने अमेरिका में एक सिख लड़की के साथ नस्ली भेदभाव की खबर को प्रमुखता से छापा है।
शुक्रिया तृप्ति। मैं यहां बता दूं कि एप्पल का अगला फोन लाल रंग का हो सकता है, लेकिन वो चीन में लाल रंग का नहीं होगा। ऐसा क्यों जानना चाहते हैं तो रुक कीजिए bbchindi.com का।
सुरों की माला जब गुंथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है,
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
संगीत की मिठास से सरागोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओ।
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए 26 मार्च से हर रविवार दिनभर कार्यक्रम में।
यकीनन आप भी हमारे साथ गुनगुनाना चाहेंगे और अब इंतजार बहुत कम वक्त का है, सिर्फ 12 घंटे के बाद यानी दिनभर कार्यक्रम में। माहौल संगीतमय है तो बात करते हैं एक गायक की। नाम है दिलजीत दोसांझ, जो इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म फिल्लौरी में नजर आए हैं। वो हैं इस हफ्ते के न्यूज़मेकर। उनसे बात की है हमारी सहयोगी सुमिरन प्रीत कौर ने।
इस गाने के बोल और आवाज दोनों फिल्लौरी के हैं।
इस हफ्ते भूत बनकर आ रही हैं अनुष्का शर्मा फिल्म फिल्लौरी में। फिल्म फिल्लौरी में है अनुष्का शर्मा, दिलजीत दोसांझ और सूरज शर्मा। अनुष्का शर्मा हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिनेमा के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं और सूरज शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म लाइफ ऑफ पाई के साथ। लाइफ ऑफ पाई जिसे ऑस्कर विजेता एंग ली ने डायरेक्ट किया था और जिसमें नजर आए थे तबू और इरफान खान। इस बार मुलाकात दिलजीत दोसांझ से। मैं आपके साथ हूँ सुमिरन।
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ।
क्या
क्या उल्लू हो?
आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? ये तो हमने देख लिया है कि वो एक परफॉर्मर है, गाता है, लेकिन अगर आप कुछ बता दे तो।
अभी तक ज्यादा जो नहीं बताया गया कि मैं बहुत अच्छा बंदा नहीं हूँ, बिगड़ा हुआ आर्टिस्ट है। अभी तो तक तो सब साहिबा और दमदम टाइप फील है, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं है, थोड़ा बिगड़ा हुआ आर्टिस्ट है। पुराने समय का रॉकस्टार है तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है और रॉकस्टार है। ईयर मैं नहीं बता पाऊंगा, तब आप स्टोरी ढूंढ लोगे। बहुत पुराना है, आप बोल लो कि 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 150 साल पुराना। कब आया होगा? जब ऐसे तवा बनने स्टार्ट हुए होंगे तो आप लगा सकते हो अंदाजा।
अब अंदाजा क्या लगाना, अब हॉल पे जाकर फिल्म देखने की बारी है। दिलजीत आप बताएं कि अनुष्का शर्मा के साथ काम करना कैसा लगा?
बहुत अच्छा, सुपरस्टार आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट है, सीनियर है मुझसे बहुत, और अपने काम को लेके बहुत डेडिकेट है और होमवर्क अच्छा है उनका। अनुष्का मैम की बहुत रिस्पेक्ट है कि खुद प्रोड्यूसर भी हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया है, एक अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी तक पंजाबी फिल्म कोई प्रोड्यूस नहीं की, मैं चाहता हूँ करना, लेकिन उन्होंने तो करके दिखाया है NH10 में और अभी फिल्लौरी उन्होंने की है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
दिलजीत आपने पंजाबी सिनेमा में काम किया है, फिर आप हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब में नजर आए, अब फिल्म फिल्लौरी में नजर आए, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों इंडस्ट्रीज के बीच?
यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदे अपॉइंट होते हैं। हम तो जब पहली पिक्चर कर रहे थे पंजाबी, हम कपड़े भी खुद ही प्रेस कर रहे थे और कपड़े भी मैंने अपने खुद के पहने फिल्म में सारे, तो हमारे पास कोई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम तो मुझे बाद में पता चला कि कॉस्ट्यूम बनने वाला बंदा अलग होता है और उसके भी आगे असिस्टेंट होते हैं। तो हम तो अपने असिस्टेंट खुद ही थे। वैनिटी का भी बहुत देर बाद पता चला। काम मेहनत तो दोनों जगह हो रही है इनके पास, क्योंकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली थिएटर्स ज़्यादा हैं, बिजनेस बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब में कहानियाँ जो कही जा रही हैं वो छोटे लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे जो राइटर्स हैं वो तो अच्छे लेवल पे काम कर।
एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है।
दिलजीत आपने अपने करियर की शुरुआत गानों से की, फिर आपने पंजाबी सिनेमा में कदम रखा और कुछ फिल्में करना शुरू की, तो क्या रिएक्शन था लोगों का जब आपने पहली फिल्म की? और आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, कुछ हिकअप्स भी आए हैं, तो ऑडियंस से कुछ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस।
पहली पिक्चर नहीं चली, बुरी तरह फ्लॉप हुई और मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि जो पग बांधते हैं वो हीरो नहीं बन सकते बेटा, लड़के लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन उसके दौरान एक पिक्चर मैंने और शूट कर दी थी, जब वो आई वो सुपरहिट हो गई, वो बहुत बड़ी हिट थी उस टाइम की, वो फर्स्ट डे इतना लगा नहीं था पंजाबी किसी पिक्चर को, फिर वहां से काम स्टार्ट हो गया। अगर शायद मैंने वो शूट ना की होती तो 100% मैं उस प्रोड्यूसर की बात सुनता और कभी फिल्म नहीं करता दोबारा। पिक्चरें तो बहुत छोटी चीज है, तो मैं एक छोटे से रोल के चक्कर में चेंज हो जाऊंगा? नेवर एवर। काम नहीं मिलेगा उस चक्कर में कोई टेंशन नहीं है, काम भगवान देने वाला है।
दिलजीत अभी तो आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, लेकिन आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे?
पहले मैं फौजी बनना चाहता था, फौजी की वर्दी, फौजी की राइफल मुझे बहुत पसंद थी, शायद मुझे उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे पता चलता है कितना टफ है। फिर 10 साल 11 साल का था जब मैं, तब मुझे हो गया था पक्का कि मुझे सिंगर आर्टिस्ट बनना। स्टेज पे जाके भी मैं ज्यादा बातें नहीं करता था, सिर्फ गाने गाता था। तो मुझे लगता था कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं कभी सोचता भी नहीं था अपने आप को। ये तो पंजाबी फिल्में तब बन रही थी, सब कर रहे थे, तो मैंने भी कर ली।
दिलजीत, आप नजर आए उड़ता पंजाब में, अब फिलौरी की बारी, अब कौन सी फिल्में हैं?
इसके बाद पंजाबी फिल्म सुपर सिंह, फर्स्ट सुपर हीरो, बालाजी ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की है पंजाबी, तो वो रिलीज है जून में। और एक पिक्चर फ्लोर पे जाएगी हमारी पंजाबी। और बॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्टें हम रोज ही सुनते हैं, दो तीन अभी भी मेरे बैग में है, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं सहज हूँ इसको करने के लिए।
तो ये थे दिलजीत दोसांझ जो बता रहे थे अपनी फिल्म फिलौरी के बारे में।
और अब जान लेते हैं कि खेल की दुनिया में क्या कुछ हलचल चल रही है। खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से धर्मशाला में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए, और उसके बाद भारत ने एक ओवर की बल्लेबाजी के बाद अगर कोई रन नहीं बनाया तो कोई विकेट भी नहीं गंवाया। केएल राहुल और मुरली विजय बिना कोई रन बनाए नाबाद थे। लेकिन कल का दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट केवल 10 रन पर गिरा, जब मैट रनशा उमेश यादव की गेंद पर एक रन बनाकर बोल्ड हो गए। उसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की। स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 20वां शतक जमाते हुए 111 रन बनाए। वो आर अश्विन की गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच हुए, जो कंधे की चोट के कारण टीम में जगह न बनाने वाले नियमित कप्तान विराट कोहली की जगह टीम की अगुवाई कर रहे थे। पूरी सीरीज में रनों के लिए संघर्ष कर रहे डेविड वार्नर ने भी आखिरकार 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वो कुलदीप यादव का शिकार बने, और उसके बाद कुलदीप यादव ने शॉन मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस को पेवेलियन की राह दिखाकर न सिर्फ अपने चयन को सही साबित किया, वरन भारत को भी राहत की सांस दिलाई। कप्तान स्मिथ और डेविड वार्नर के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने 57 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 300 रन तक पहुंचने में मदद की। कुलदीप यादव ने 68 रन देकर 4 विकेट झटके, और जब ऐसा झटका कोई दे तो फिर वो खुश कैसे ना हो।
यादव जी, आपने तो कमाल कर दिया।
Seriously, I'm very happy. It's a dream come true for me. Actually, playing a test match and performing like this, nothing can't ask more than this.
उमेश यादव ने 2, भुवनेश्वर कुमार और अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट हासिल किया। वैसे आर अश्विन ने भले ही एक विकेट हासिल किया हो, लेकिन वो एक ही सीजन में 79 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन के 78 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा।
और अब श्रोताओं से एक सवाल, भारतीय टीम का वो कौन सा गेंदबाज है जिसने पहले ही टेस्ट में अपने प्रदर्शन से महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से तारीफ हासिल की है? ये वो लेग स्पिनर है जिसने शेन वॉन से गेंदबाजी के गुर सीखे और उसे ऑस्ट्रेलिया की टीम पर ही आजमा दिया। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो रुक कीजिए bbchindi.com का। और अब हम सभा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। गुजरात पुलिस के मुताबिक पाटन जिले के एक गांव में 2 समुदायों के बीच शनिवार को हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी शहर सिलहट में हुए धमाकों में 4 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी और एक संदिग्ध हमलावर शामिल है। पेंटागन ने माना है कि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के विमानों ने इराकी सेना के अनुरोध पर पश्चिम मूसल के इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले उन इलाकों पर हमला किया जहां कई नागरिक मारे गए। अब इसकी जांच कराई जा रही है। बेलारूस की राजधानी मिंस्क में पुलिस ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कम रोजगार पर टैक्स के खिलाफ हालिया प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। चीन ने ब्राजील से मीट के आयात पर लगाया प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया है। ये प्रतिबंध इस महीने की शुरुआत में तब लगाया गया था जब पुलिस ने वरिष्ठ निरीक्षकों पर रिश्वत लेकर असुरक्षित उत्पादन को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। तुर्की ने स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान के खिलाफ 1 मार्च में आपराधिक जांच की मांग करने के लिए अंकारा में वरिष्ठ स्विस राजदूत को बुलाया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुनाए तृप्ति श्रीवास्तव ने। इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।